दिन भर 12 दिसंबर बुधवार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का नमस्कार। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होगी कांग्रेस की सरकार, लेकिन मुख्यमंत्रियों के नाम पर संशय बरकरार। तीन राज्यों में हार के बाद 2019 के लिए भाजपा की क्या होगी रणनीति?
तो पहली चीज तो ये कि अब वो कांग्रेस को एक गंभीर चुनौती के रूप में लेने के लिए बाध्य होंगे। इन चुनाव के नतीजों से एक बात समझनी चाहिए कि जब भी रोजी रोटी का सवाल आएगा वो धर्म और आस्था पर हमेशा भारी पड़ेगा।
तो वहीं जानेंगे शक्तिकांत दास के आरबीआई गवर्नर बनने पर क्या कहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी।
अब इसमें ये जो महाभ्रष्ट आदमी है उसको गवर्नर रिजर्व बैंक बना दिया। अब मैंने तो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा इस पर।
होंगी खेल की भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। भारत के मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे पर अब तक संशय बरकरार है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री चुनने का फैसला कांग्रेस आलाकमान पर छोड़ दिया गया है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने आज अपनी हार स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस से अपने वादे पूरे करने की अपील की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा है कि अपने नेतृत्व के लिए चुनौती का सामना वो पूरी शक्ति से करेंगी। उनकी सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के कम से कम 48 सांसद ब्रेग्जिट मसले पर उनके रवैये से नाराज होकर अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं। भारतीय समय के मुताबिक आज देर रात पार्टी के सांसद इस पर मतदान करेंगे। टेरेसा मे ने कहा है कि इस वक्त नेतृत्व में बदलाव से देश के भविष्य के लिए खतरा पैदा होगा, क्योंकि 3 महीने बाद ही ब्रेग्जिट अमल में आने वाला है। संवाददाताओं का कहना है कि टेरेसा मे अगर ये प्रस्ताव जीत भी जाती हैं तो भी इस चुनौती से उन्हें राजनीतिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद डेसमंड स्वेन ने कहा है कि वो नहीं जानते कि वो किस ओर मतदान करेंगे। उन्होंने कहा,
I believe that we are facing a election very soon because the Prime Minister does not have a majority in Parliament.
मैं मानता हूं कि जल्द ही चुनाव होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री के पास संसद में बहुमत नहीं है। वो बहुमत के लिए डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी पर निर्भर हैं, जो अब उनके साथ काम नहीं करना चाहती। क्या मैं टेरेसा मे के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार हूं? ये वो सवाल है जिससे मुझे जूझना है। ये थे कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद डेसमंड स्वेन के शब्द। हांगकांग में हुए एक कार्यक्रम में म्यांमार की जेल में कैद रॉयटर्स के 2 पत्रकारों को रिहा करने की मांग की गई। आज दोनों पत्रकारों की गिरफ्तारी को 1 साल पूरा हो रहा है और इस मौके पर लंदन और यंगून में भी कार्यक्रम होने वाले हैं। पत्रकार वा लोन और क्या सो ओ को पिछले साल गिरफ्तार कर लिया गया था जब वो म्यांमार की सेना की ओर से रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार की घटनाओं की पड़ताल कर रहे थे। उन्हें म्यांमार के आधिकारिक गोपनीयता कानून के उल्लंघन के लिए 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों पत्रकारों की गिरफ्तारी की खासी आलोचना हुई थी। अमरीकी पत्रिका टाइम ने इस साल जिन पत्रकारों को पर्सन ऑफ द ईयर के पुरस्कार के लिए चुना है इनमें ये दोनों पत्रकार भी शामिल हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के संपादक स्टीवन एडलर ने कहा, वालोन और क्या सो ओ का स्वास्थ्य ठीक है। वे जेल में हैं और ये कभी भी अच्छी बात नहीं हो सकती, लेकिन उनका हौसला काफी मजबूत है और वे अपने काम के लिए अब भी प्रतिबद्ध हैं। मुझे लगता है कि इसी से उनका मनोबल मजबूत बना रहता है। उनके परिवार नियमित तौर पर उनसे मुलाकात करने जाते हैं और परिवार के जरिए ही बाहर की दुनिया से उनका संपर्क बना हुआ है। ये थे समाचार एजेंसी रॉयटर्स के संपादक स्टीवन एडलर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। श्रीलंका की संसद ने विश्वास प्रस्ताव में प्रधानमंत्री पद से हटाए गए रनिल विक्रमसिंघे के पक्ष में वोट किया है। इससे देश का राजनीतिक संकट और गहरा गया है। 225 में से 117 सांसदों ने विश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया है। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने कहा था कि भले ही विक्रमसिंघे को सांसदों का समर्थन मिल जाए वह उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। अक्टूबर में सिरिसेना ने विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने संसद भंग करके चुनाव करवाने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट आने वाले कुछ दिनों में इस आदेश की वैधता पर फैसला दे सकता है। आप सुन रहे थे बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं, और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। सबसे पहले रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां आज सुबह तक चली मतगणना के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है। 230 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस ने 114 पर कब्जा जमाया, जबकि भाजपा के खाते में 109 सीटें आई हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने 2 और समाजवादी पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। दोनों ही दलों ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है, लेकिन ये सवाल अब भी बना हुआ है कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया गया है, अब फैसला राहुल गांधी करेंगे। सुनिए भोपाल से शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर सस्पेंस खत्म होने के साथ ही कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है। 15 साल बाद पार्टी एक बार फिर सत्तारूढ़ होने जा रही है। कल देर रात जाकर तस्वीर साफ हुई तो कांग्रेस को 114 और भाजपा को 109 सीटों पर जीत मिली। उसके बाद अन्य 7 विधायकों का समर्थन भी कांग्रेस को मिल गया, जिसकी बदौलत पार्टी 121 के साथ बहुमत तक पहुंच गई। इन 7 विधायकों में 4 विधायक निर्दलीय हैं, तो 2 बसपा और 1 सपा का है। बसपा और सपा ने कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला कर लिया था। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ राजभवन गए और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। कमलनाथ के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी और विवेक तन्खा भी गए। विधायक दल के नेता नहीं चुने जाने की वजह से राजभवन ने अभी इन्हें आमंत्रण नहीं दिया है। कमलनाथ को मुख्यमंत्री चुने जाने की संभावना है। इसके बाद कमलनाथ सौजन्य भेंट करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास भी गए। वहीं अब सारी नजरें प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के चुने जाने पर लग गई हैं। इस दौड़ में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं। दोनों ही के समर्थक इसके लिए जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसमें किसी भी तरह के विवाद से इनकार कर दिया है।
कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगे वो सिरमाते हैं। हम सबको एक साथ मिलकर जनता की आशाओं और अभिलाषाओं को पर खड़े उतर कर उन्हें पूर्ण करनी है, यही हमारा संकल्प। हमारी स्पष्ट बहुमत है, नहीं नहीं 114 है और सब निर्दलीय हमारे साथ है, बीएसपी हमारे साथ है, समाजवादी हमारे साथ।
वहीं कल देर रात तक जारी ड्रामे का अंत सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्रकार वार्ता के बाद समाप्त हो गया, जब उन्होंने कहा कि भाजपा को वोट ज्यादा मिले लेकिन हम संख्या बल में पिछड़ गए। मैं संख्या बल के सामने सिर झुकाता हूं और राज्यपाल को इस्तीफा देने जा रहा हूं। शिवराज सिंह चौहान ने इस हार की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली।
सबने परिश्रम किया, ये बात सच है कि 2008 में हमने वोट प्राप्त किए थे 38%, आप में से ध्यान हो तो, और सीट हमको मिली थी 143। इस बार वोट प्राप्त किया हमने 40%, सीट हमें मिली 109 का अंक गणित बिल्कुल अलग हो जाता है। इसलिए पहले से भी ज्यादा प्राप्त करने तो भी सफलता वैसी दिखाई नहीं देती, लेकिन ये बात सच है कि हम बहुमत प्राप्त नहीं कर सके, अपेक्षित सफलता भी प्राप्त नहीं कर पाए, और उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो केवल शिवराज सिंह चौहान है, केवल मैं हूँ। क्योंकि इतने सहयोग के बावजूद अपेक्षित परिणाम न ला पाना, और केंद्र सरकार के इतने अच्छे कामों के बाद, राज्य सरकार की ऐसी योजनाओं के बाद हम अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, तो इसके लिए दोष केवल मेरा है, कमी मुझ में ही कहीं ना कहीं है कि मैं उस कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया।
कांग्रेस मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और वह दूसरों के समर्थन से बहुमत तक पहुंचने में कामयाब रही। प्रदेश में पिछले 15 सालों से भाजपा सत्ता पर काबिज थी और शिवराज सिंह चौहान 13 सालों तक मुख्यमंत्री रहे। प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर की वजह से कांग्रेस 58 सीटों से 114 तक पहुंचने में कामयाब रही। भाजपा को वोट कांग्रेस से ज्यादा मिले, उसके बावजूद उसकी सीटें कम रहीं। शुरहनिया जी, बीबीसी न्यूज भोपाल।
कौन होगा मुख्यमंत्री? मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी ये सवाल बरकरार है। नवनिर्वाचित विधायकों के साथ रायशुमारी के बाद राजस्थान में भी नेता के नाम पर फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। वहीं विधायकों की बैठक के दौरान जयपुर में कांग्रेस दफ्तर के बाहर दावेदार नेताओं के समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया, इसे देखते हुए पुलिस तैनात करनी पड़ी। सुनिए जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
अ अंदर पर्यवेक्षक विधायकों से रायशुमारी कर रहे थे, बाहर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख सचिन पायलट के समर्थक शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस के सदर मुकाम इंदिरा गांधी भवन पर दिन भर रह रहकर नारे बुलंद होते रहे। इस हुजूम में कोई इस खेमे से था तो कोई उस गुट से। दिन भर की मशक्कत के बाद पार्टी नेताओं गहलोत, सीपी जोशी और पायलट ने एक लाइन का प्रस्ताव रखा और नेता का निर्णय राहुल गांधी पर छोड़ दिया गया। पार्टी के अनुसार नव निर्वाचित विधायकों के साथ पार्टी संगठन में कार्यकर्ताओं से भी राय ली जा रही है। इस पूरी कवायद में पार्टी विधायक दल में धड़ेबंदी साफ दिखाई दी। इस बैठक के बाद कांग्रेस के एक विधायक भंवरलाल शर्मा ने मीडिया से कहा,
राय का पता तो राहुल जी को, ये अपनी रिपोर्ट देंगे जो प्रोजेक्ट से आए, उसके बाद राहुल जी जो मैसेज देंगे वही राय है। पैरामीटर ऐसा है कि राजस्थान के विकास का स्थायी सरकार देने का होता है, और कोई पैरामीटर नहीं होता, व्यक्ति का नहीं होता। ऐसा है, जनतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, नारे लगाने का अधिकार है, फैसला आखिर हाईकमान करता है। और आगे जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो निश्चित तौर से हम 25 सीटें लाने की सोच रहे हैं, वो विकास के नाम से 6 महीने में काम करके दिखाएंगे 25 सीट लाएंगे।
कांग्रेस में यह उस पुराने दौर की याद दिलाता है जब पार्टी का वर्चस्व था और विधायक दल में नेता चुनने के लिए नेताओं में शक्ति परीक्षण होता था। इस बैठक के बाद बाहर निकले एक विधायक परसराम मोरदिया ने कहा, अभी विधायक दल की एक और बैठक होगी, तभी नेता के नाम का ऐलान किया जाएगा।
अभी फाइनल नहीं है, जो भी है वो तो हमारे उपजर आए हुए हैं, जैसे चाहेंगे। हाईकमान हमेशा हाईकमान ही करता है फैसला, दोबारा मीटिंग होगी।
इससे पहले केंद्रीय पर्यवेक्षक वेणुगोपाल और पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे ने विधायकों से अलग अलग मिलकर उनकी राय पूछी। बाद में पार्टी ने इस राय शुमारी को और व्यापक किया, इसमें संगठन के लोगों से भी बात की जा रही है। प्रेक्षक कहते हैं कि कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए बहुमत जुटा लिया, लेकिन नेता चुनने में उसे दिक्कत आ रही है। कांग्रेस दफ्तर पर नारों की गूंज में सेवा की आकांक्षा है तो सत्ता की महत्वाकांक्षा भी। पार्टी के पास दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि किसे चुने। नारायण बारेठ, BBC जयपुर।
और कुछ देर पहले कांग्रेस नेताओं ने जयपुर में राज्यपाल कल्याण सिंह से मुलाकात की है। इसकी ताजा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं जयपुर हमारे सहयोगी नारायण बारेठ के पास। जी नारायण जी, हमारे श्रोताओं को इस मुलाकात के बारे में और अधिक जानकारी दें।
अभी भी कांग्रेस के प्रमुख नेता अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अविनाश पांडे और केंद्रीय पर्यवेक्षक वेणुगोपाल राजभवन में राज्यपाल के साथ ही हैं और सरकार बनाने के लिए अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि उनको बहुमत मिला है इसलिए सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। लेकिन एक सवाल अब भी दिन भर के विचार विमर्श के बाद अनुत्तरित है कि नेता कौन होगा। इस सवाल के लिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पे छोड़ा गया है, हो सकता है देर रात फैसला हो, या ये भी हो सकता है कि कल इस पे निर्णय किया जाए। पार्टी तय नहीं कर पा रही है, या कोई गुत्थी ऐसी जिसको सुलझा नहीं पा रही है। घंटों तक बैठक हुई है, एक एक विधायक से अलग अलग बातचीत की गई है, पार्टी संगठन के लोगों से सलाह मशविरा किया गया है, लेकिन पार्टी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाई है। जो कांग्रेस का सर्किल है, जो फिजा है, उसमें अब भी कोतूहल है, उत्सुकता है, बेचैनी है कि नेता कौन होगा। और ऐसा पहली बार हुआ है कि नेता चुनने में इतनी ज्यादा पेचीदगियां सामने।
नारायण जी, हमें ये बताएं कि किसके समर्थक भारी पड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि हमने आपने बताया अपनी रिपोर्ट में कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हो रहे थे।
दोनों ही जो कांग्रेस के नेता हैं, गहलोत हो या पायलट, उनके समर्थक कोई इस हिस्से की तरफ खड़ा, कोई उस तरफ खड़ा हुआ है। दिन भर अगर नारों से ही अगर कोई तुलना की जाए या ताकत तोली जाए तो दोनों भारी पड़ रहे थे, और मैं कहूंगा कि पायलट की तरफ ज्यादा उत्साहित नौजवान थे जो दिन भर मशक्कत कर रहे थे, अपने नेता की सराहना कर रहे थे, और गहलोत की जो समर्थकों की भीड़ थी वो कुछ खामोश और इस तरह के लोग थे। तो वहाँ पुलिस तैनात करनी पड़ी है सुरक्षा बनाए रखने के लिए कि दोनों गुटों के बीच में कहीं कोई टकराव न हो जाए। पूरे दिन मीडिया के लोग आते जाते रहे, लेकिन उनको पुलिस की बाधाएं पार करके जाना पड़ा। अब समझा जाता कि इशारे मिल रहे हैं कि कल शायद राहुल गांधी फैसला करें या देर रात कोई निर्णय करे, और ये भी निर्भर है कि अभी जब ये राज्यपाल से मुलाकात करके लौटते हैं तो क्या कुछ ऐसा कुछ ब्रीफ करते हैं, क्योंकि पूरे दिन उन्होंने मीडिया को ब्रीफ नहीं किया है कि पार्टी के भीतर क्या चल रहा है, किस निष्कर्ष पे पार्टी पहुंची है। तो अब सबकी निगाहें लगी हुई है कि ये क्या राजभवन से मुलाकात
आलाकमान कहते हैं या दिल्ली जी, आलाकमान क्या फैसला लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए नारायण बारेठ जी। ताम्रध्वज साहू, TS सिंहदेव या भूपेश बघेल, इनमें से कौन होगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, यही सवाल चारों ओर घूम रहा है। 90 सीटों वाली छत्तीसगढ़ में 68 सीटें जीतकर कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज की है। छत्तीसगढ़ में अभी क्या चल रहा है, यही जानने के लिए सीधे चलते हैं राजधानी रायपुर, जहां हमारे सहयोगी आलोक पुतुल मौजूद हैं। जी आलोक, बताएं वहां क्या सरगर्मियां चल रही हैं।
देखिए, कांग्रेस पार्टी की ये जो भारी बहुमत आई है, भारी तरीके से जितनी सीटें आई हैं, 68 सीटें लेकर कांग्रेस पार्टी आई है, तो उत्साह जो है वो बिल्कुल सब तरफ नजर आ रहा है। आज सुबह से ही कांग्रेस भवन में अलग अलग इलाकों के विधायकों का आना जाना जो है वो लगा रहा। अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हो रहे हैं, मोतीलाल वोरा शामिल हो रहे हैं, और इन सभी विधायकों को अपना नेता चुनने के लिए बुलाया गया है। और अब उम्मीद की जा रही है कि आज शायद ये मुख्यमंत्री पद के लिए जो 3-4 नाम चल रहे हैं उन पर शायद कोई फैसला हो जाए।
तो आलोक जी, इसमें से क्या लगता है किस तरफ ज्यादा पलड़ा भारी होता दिख रहा है, क्या किसके समर्थकों में ज्यादा उत्साह है, या कैसी खबरें मिल रही हैं कि कौन हो सकता है, टीएस सिंहदेव या भूपेश बघेल जो वहां के कांग्रेस अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के?
छत्तीसगढ़ में 3-4 नाम जो है वो प्रमुखता से मुख्यमंत्री पद के लिए सामने आए हैं। उसमें स्वाभाविक तौर पे भूपेश बघेल का नाम सबसे आगे आ रहा है, क्योंकि सांगठनिक तौर पे उन्होंने पिछले 5 सालों में संगठन को जितना मजबूत किया है, दूसरी ओर उन्होंने पार्टी में जो लगातार फूट की खबरें आती रहती थी, पार्टी के नेताओं के बीच जो खटपट हुआ करती थी उस पर भी रोक लगाई है। रमन सिंह के खिलाफ ताल ठोक कर मैदान में आने वाले हिम्मती नेता के तौर पर उनकी पहचान बनी है। तो भूपेश बघेल स्वाभाविक रूप से एक बड़ा नाम सामने आ रहा है, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष हैं टीएस सिंहदेव जो अंबिकापुर से चुनकर तीसरी बार आए हैं सामने, समर्थक ये मानकर चल रहे हैं कि एक सौम्य चेहरा जो है टीएस सिंहदेव के तौर पर छत्तीसगढ़ में चुना जाना चाहिए।
जी आलोक जी, क्या लग रहा है कि कब तक फैसला हो सकता है, पार्टी हाईकमान कब तक फैसला ले सकती है?
अब से थोड़ी देर बाद 8 बजे के आसपास बैठक शुरू होने वाली है, और बैठक में रायशुमारी के बाद ही ये तय हो पाएगा कि किसके नाम पर मुहर लगती है। हालांकि हमने अब से थोड़ी देर पहले भूपेश बघेल समेत दूसरे कुछ नेताओं को टटोलने की कोशिश की, लेकिन हर एक नेता ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि भाई अंतिम निर्णय तो आला कमान को करना है। मतलब इसका एक यह भी निकलता है कि आज की बैठक के बावजूद शायद अंतिम फैसला आला कमान ही ले।
जी शुक्रिया आलोक पुतुल जी इतनी जानकारी के लिए। भाजपा की हार के बाद पार्टी के बड़े नेताओं की कल बैठक होनी है, जिसमें नतीजों पर गहराई से विचार किया जाएगा। तो क्या 2019 के आम चुनाव में पार्टी की नीति और रणनीति में कोई परिवर्तन होगा? क्या पार्टी के दो बड़े स्तंभ नरेंद्र मोदी और अमित शाह पार्टी को कोई नई राह दिखा पाएंगे? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारे सहयोगी जुबैर अहमद ने राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप सिंह से संपर्क किया।
मुझे लगता है कि बदलाव आना चाहिए और आएगा भी। देखिए, ये रेस खुल गई है, अभी तक वन हॉर्स रेस लग रही थी। जो इन 3 राज्यों में जो बदलाव आया है उसके बाद ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की रेस होगी। तो राहुल गांधी एक चैलेंजर के रूप में सामने आ गए
जी,
और एस्टेब्लिश हो गए हैं। अभी तक जो उनकी स्थिति थी वो ऐसे नेता की थी जिसको कोई गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इन 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब उनकी बात न केवल भारतीय जनता पार्टी को और उसकी सरकार को, बल्कि विपक्षी दलों को भी, जो अभी तक उनके नेतृत्व को स्वीकार करने में थोड़ा हिलाहवाली कर रहे थे, उनको भी गंभीरता से लेना पड़ेगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और सरकार का सवाल है कि अब वो उनका रास्ता क्या होगा आगे का, तो पहली चीज तो ये कि अब वो कांग्रेस को एक गंभीर चुनौती के रूप में लेने के लिए बाध्य होंगे। दूसरा ये कि इन चुनाव के नतीजों से एक बात समझनी चाहिए कि जब भी रोजी रोटी का सवाल आएगा वो धर्म और आस्था पर हमेशा भारी पड़ेगा। किसानों की समस्या, नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या, व्यापारियों की समस्या, मिडिल क्लास की जो कर्ज के टैक्स के बोझ से दबा हुआ है उसकी समस्या, उसका हल कोई मंदिर नहीं हो सकता है। अयोध्या में मंदिर एक अलग मुद्दा है, वो इन समस्याओं का जवाब नहीं है, उनका हल नहीं है कि वो उसके करने से ये समस्याएं दब जाएंगी, ये लोगों ने बड़ा स्पष्ट रूप से बता दिया है।
तो आपके विचार में क्या इनको ये पैगाम मिला है, मिलेगा, या इनकी रणनीति में कोई फर्क आएगा आपके ख्याल से?
अभी आगे देखने पर पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि समझ इतना मतलब राजनीतिक समझ तो है, ये मान के चलना चाहिए कि इतने राज्यों में सत्ता में आए हैं, केंद्र में सत्ता में हैं, तो ये राजनीतिक समझ तो होगी कि वोटर क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। तो उसके हिसाब से कोर्स करेक्शन अगर नहीं किया तो तो फिर आप हारने के लिए तैयार रहिए।
एज एन एनालिस्ट, आपके विचार में क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव का सामना करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए?
नहीं, मुझे लगता है कि सोचना चाहिए कि 2014 में लोगों ने क्यों चुना। तो उस समय बड़ा दो तीन मुद्दे बड़े थे। एक तो रोजगार के मुद्दे पर आपने कहा, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर आपने जो वायदे किए, इसके अलावा जो है राष्ट्रवाद की बात की उस समय आपने, और भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया। यूपीए 2 के बारे में जिस तरह की इमेज बन गई थी, जो धारणा थी, जो खबरें आ रही थी, उन सबको लेकर आपकी एक विश्वसनीयता बनी और एक उम्मीद बनी। उस पर आपने डिलीवर क्या किया? लोगों की जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप डिलीवरी लोगों को नहीं दिख रही है
जी।
तो अब लोगों के सामने सवाल ये होगा कि क्या हम फिर से कांग्रेस के पास लौट कर जाएं या नरेंद्र मोदी को एक और अवसर दें।
ये थे राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप सिंह। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हार पर भाजपा का कहना है कि वो इस पर आत्मचिंतन करेगी। वहीं मध्य प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हार की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन वहीं भाजपा के एक दिग्गज सांसद सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस की इस जीत को जीत नहीं बताते, और तो और वो नए RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की योग्यता पर भी सवाल खड़े करते हैं। उनसे बात की BBC संवाददाता फैसल मोहम्मद अली ने।
ये पांचों को कुल मिलाकर देखोगे तो ये कांग्रेस के लिए वोट नहीं था, क्योंकि कांग्रेस के लिए वोट होता एक सारा देश में एक माहौल होता। तो फिर मिजोरम में क्यों इतनी बुरी तरह हारे, तेलंगाना में क्यों इतनी बुरी तरह हारे?
मगर ये कहा जाता है कि तेलंगाना में उनकी हालत पहले से
वो ठीक है ना, तो हवा सरकार राष्ट्रीय कोई हवा तो नहीं है इनके पक्ष में। और जहाँ BJP ऑल्टरनेटिव नहीं थी वहाँ तो हार गए, माने मिजोरम और तेलंगाना। जहाँ BJP ऑल्टरनेटिव थी और कोई नहीं था तस्वीर में, वहाँ कांग्रेस जीती है। और वो हम भी बुरी तरह नहीं हारे।
छत्तीसगढ़ को क्या था?
छत्तीसगढ़ एकमात्र है, उसमें जांच करने की जरूरत है।
तो 2019 में मतलब
उसको देखे, निश्चित मैं यही बता देता हूँ, निश्चित तौर पर तीन मुद्दे पर लोग मुझे कहते थे। तो उन्होंने, पब्लिक ने मुझसे कहा, नोटबंदी आप लोगों ने किया जब हमारी फसल बोने की बात थी और बेचने की बात थी, जब हमें सबसे ज़्यादा कैश चाहिए। फिर ये GST, इससे उस समय ये तो कांग्रेस का बिल था। जेटली को तो कांग्रेस का कुछ बुरा नहीं लगता, तो उन्हीं का ले लिया उन्होंने। तो मैं ये कहता हूँ कि GST में सारे व्यापारी जो लोग हमारी 100%, वो हमारे थोड़े खिलाफ हो गए। हाँ, दूसरी बात, सब जगह लोगों ने कहा, आपने कहा कि 15 लाख हमारे अकाउंट में जमा करेंगे, कहाँ है?
अब आ सकता है सारे?
अब 5 मिनट का काम है। मैं कह रहा हूँ फाइनेंस मिनिस्ट्री इसमें अड़ंगा कर रही थी, अब इसमें ये जो महाभ्रष्ट आदमी है उसको गवर्नर रिजर्व बैंक बना दिया।
ये भी पूछना चाहता हूँ, करेक्शन की बात हो रही थी जो आदमी नोटबंदी की,
अब मैंने तो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है इस पर, कोर्स करेक्शन एक ही करना है कि राम मंदिर के लिए जो हम कर सकते हैं करना है, लोगों को लगना चाहिए हम कर रहे हैं।
जब राम मंदिर की बात स्वामी जी आपने कर दी, तो एक सवाल बताइए कि क्या इस सेशन में शीतकालीन सत्र जो कि शायद
वो मैं नहीं जानता, मैं तो इसमें दिलचस्पी नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा याचिका पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में।
एक समय ये कहा जाता है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए, लेकिन फिर कांग्रेस तो कुछ राज्यों में वापस आ गई एक तरह से,
तो क्या इसे सारा हो गया क्या? अभी देखते हैं आगे, हो सकता पब्लिक हमें जगाना चाहती थी।
तो पब्लिक जगाना चाहती थी तो किन किन मामलों पे जागना
चाहती थी? कह दिया ना आपको, पहले ही कह दिया था, तीन बातें थे, और विदेश से पैसा नहीं लाई।
तो विदेश से लगता है लोगों को कि पैसा आ सकता है?
ऑफ कोर्स, मैं बता रहा हूँ आ सकता है, सारे चोर तो लंदन में है।
कह रहे कि ये 2019 के लिए एक तरह से संकेत हो गया कि महागठबंधन जो है वो आसान हो जाएगा पहले के बनिस्पत।
अरे ये देखो, कहानी बनाने में बहुत होता है। हम तो कहते थे हम जीतते जाएंगे, क्योंकि हमारे पब्लिक को कोई यानी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इंदिरा गांधी सोचती थी इमरजेंसी के बाद सबके लिए, सब रोटी का सवाल है, कोई मूलभूत अधिकार का सवाल नहीं है। क्या हुआ, वो खुद हार गई। तो इसीलिए ऐसा पब्लिक का मानना कि ऐसे ही रहेंगे, अब उन्होंने एक मन बना लिया, अब कांग्रेस को लाना है, इसमें कांग्रेस कहाँ आई है? तो उससे तो सरकार नहीं बन सकती है ना। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कुछ मिलेगा?
मैं देखने चाहता हूँ। बंगाल में कुछ मिलेगा मैं देखने चाहता हूँ।
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के कुछ जो बड़े लीडर्स हैं उनमें बड़ा अहंकार आ गया था, लोगों की बात सुन रहे थे, नोटबंदी को भी सही ठहरा रहे थे।
लीडर्स में नहीं,
उनको आप कुछ सलाह,
लीडर्स में नहीं, उन लोगों में जो चुनाव नहीं जीत सकते उन्हीं के।
लगता है कि जो ये जो दावे होते हैं कि हम आने वाले 10 साल और 20 साल तक शासन करेंगे, ये थोड़ा सही नहीं है, जनता इसको बन सकती है?
नहीं नहीं, कोई जनता का यानी ठेकेदार नहीं बन सकते इस देश में। अब जनता जो है उसको कोई ये नहीं सोच सकता कि मैं जो कहता हूँ वही जनता करेगी, ये हो सकता है, परंतु जनता को भूलना नहीं चाहिए। मैं तो आशा करता हूँ कि इस देश को सुधारने के लिए, इस देश को अपने पांव पर खड़े करने के लिए, इस देश में जो अंग्रेजीकरण हुई है, गुलामी की जो अंग्रेजीकरण हुई है, उसको निकालना, उसका उन्मूलन करना, उसके लिए कम से कम बीजेपी 20 साल राज करनी चाहिए, तभी होगा। इतिहास के पुस्तकों को बदलना, ये सारी चीज़ें करने के लिए।
स्वामी जी, आप भी तो एक अंग्रेजी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं सारी,
तो क्या है, तो मैं ब्रेन वॉश नहीं हुआ ना, मैं तो उनकी कृपा में नहीं गया ना, वो मुझे बुलाया तो मैं गया और मैंने उनको पढ़ाया, जो मैं आज खुल के बोलता हूँ तो अमेरिकन्स ने मुझे सिखाया।
आखिरी बात यह है कि क्या मतलब जो विरोधी हैं उनको बहुत ही कमतर समझना या उनके लिए तरह,
मैं विरोधियों को कम कभी नहीं समझता हूँ। जाके सारे विरोधी पार्टियों से बात कर लीजिए मेरे बारे, कहते हैं व्यक्तिगत तो बहुत अच्छे, ममता से पूछ लीजिए, मायावती से पूछ लीजिए, किसी से पूछ। मैं तो कहता हूँ वो भी हमारे हिस्सेदार हैं, उनको मान के चलना चाहिए, वो भी राज कर सकते हैं।
नहीं तो राहुल गांधी पर इतने जो पर्सनल आक्रमण हुए वो कहीं,
वो तो है, होना ही चाहिए, उन्होंने जो गलत काम किए हैं,
गलत काम, लेकिन उनके नामों से बुलाना
क्या,
पप्पू वगैरह,
पप्पू तो उस समय तो पप्पू थे ही।
ये थे भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। और अब समय है खेल समाचारों का।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। ग्रुप स्टेज की चुनौती को पार कर चुकी भारतीय पुरुष हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में तो पहुंच गई है, लेकिन सेमीफाइनल के लिए उसे बड़ी लड़ाई लड़नी है। भारतीय टीम को हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कल 3 बार की चैंपियन नीदरलैंड से भिड़ना है। नीदरलैंड्स जहां चौथे खिताब के लिए एक और कदम बढ़ाने मैदान पर उतरेगी, वहीं भारतीय टीम का लक्ष्य 1975 के बाद पहली बार विश्व कप जीतते हुए साल का अंत करना होगा। कनाडा से कल क्रॉसओवर मैच में 5-0 की जीत दर्ज कर नीदरलैंड्स ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं भारत पूल सी के 3 मैचों में 2 जीत और 1 ड्रॉ के साथ टॉप पर रहते हुए अंतिम 8 में पहुंचा। वर्ल्ड नंबर 4 नीदरलैंड्स का डिफेंस और अटैक दोनों मजबूत हैं, और मलेशिया के खिलाफ 7-0 और क्रॉसओवर में 5-0 की जीत ये साफ करता है कि भारतीय टीम के लिए गोल करना मुश्किल हो सकता है। फिर भी टीम अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरेगी, ऐसा कहना है टीम के फॉरवर्ड सिमरनजीत सिंह का।
वो लोग ज्यादा क्रिएटिविटी में बिलीव करते हैं, हॉलैंड के प्लेयर्स, वो एक्चुअली जो वैनस हैं एंड बिली बेकर हैं, हमेशा उनके माइंड में रहता है कि कुछ क्रिएट किया जाए एंड देन अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए। हर वेला समय उनका दिमाग में ये रहता है कि कुछ ना कुछ अलग क्रिएट किया जाए, ताकि ओपोनेंट्स को इसकी इसके ऊपर काम भी ना किया हो, इसका पता भी ना हो। तो हमारी भी ये प्लानिंग रहती है कि हम मेंटली प्रिपेयर हैं कि वो हर टाइम कुछ डिफरेंट करेंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है।
और अब बात बैडमिंटन की। भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में बेहतरीन शुरुआत की है। अपने से ऊंची रैंक वाली जापान की अकाने यामागुची को आज उन्होंने सीधे गेमों में 24-22, 21-15 से हराया। दूसरे ग्रुप मैच में सिंधु का सामना टॉप सीड ताइवान की ताई जू यिंग से होगा। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का, लेकिन उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। भारत के मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे पर अब तक संशय बरकरार है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा है कि अपने नेतृत्व के लिए चुनौती का सामना वो पूरी शक्ति से करेंगी। हांगकांग में हुए एक कार्यक्रम में म्यांमार की जेल में कैद रॉयटर्स के 2 पत्रकारों को रिहा करने की मांग की गई। श्रीलंका की संसद ने विश्वास प्रस्ताव में प्रधानमंत्री पद से हटाए गए रनिल विक्रमसिंघे के पक्ष में वोट किया है, इससे देश का राजनीतिक संकट और गहरा गया है। पाकिस्तान ने स्वयं को धार्मिक आज़ादी का हनन करने वाले देशों की सूची में रखे जाने के बाद अमेरिका की आलोचना की है। पाकिस्तानी विदेशी मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में इस फैसले को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया गया है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने अगले साल तक न्यूनतम मजदूरी में 22% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए आए हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दे अनुमति। नमस्कार।